एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की ज्ञान गोष्ठी में हम एक बहुत ही खास किताब पर बात कर रहे हैं, क्रूसेड इन यूरोप। ये सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि कहना चाहिए नेतृत्व और बड़ी मुश्किलों पर जीत की कहानी है।
जी हाँ, और इसे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जो मित्र देशों की सेनाएं थी उनके सुप्रीम कमांडर 5-स्टार जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने, और वो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो ये किताब उनके अपने नज़रिए से उस महायुद्ध का एक लेखा जोखा है।
और ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है कि कैसे इतने अलग अलग देश, जिनकी भाषाएं अलग, संस्कृति अलग, यहाँ तक कि सेना की ट्रेनिंग भी अलग, वो सब एक साथ आए।
बिल्कुल, किताब का एक बड़ा सवाल यही है कि शायद मानव इतिहास का सबसे जटिल सैन्य अभियान आखिर वो सफल कैसे हुआ।
तो ये किताब महज घटनाओं का ब्यौरा तो नहीं होगी?
हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आइजनहावर सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि वो उन उसूलों, उन मूल्यों की बात करते हैं जिनसे ये सब मुमकिन हुआ। ये असल में लीडरशिप की एक मास्टर क्लास है, कैसे बड़े संगठनों को चलाना है, कैसे ताकतवर अलग राय रखने वाले लोगों को एक साथ लाना है। ये बातें तो आज भी उतनी ज़रूरी हैं।
तो चलिए आइजनहावर के साथ ही चलते हैं सफर पर। कहाँ से शुरू होती है कहानी किताब में?
किताब शुरू होती है युद्ध से ठीक पहले के अमेरिका से। आइजनहावर बताते हैं कि उस वक्त अमेरिकी सेना कितनी छोटी थी, कमजोर थी, मतलब एक विश्व युद्ध के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी।
अच्छा।
हाँ, वो खुद उस समय वॉशिंगटन डीसी में थे, वॉर प्लान्स डिवीजन में, जनरल जॉर्ज सी मार्शल के अंडर काम कर रहे थे, और वहीं पर मित्र देशों की वो बुनियादी रणनीति बनी जिसने युद्ध का रुख मोड़ा। जर्मनी फर्स्ट।
जर्मनी फर्स्ट, इसका मतलब यूरोप पहली प्राथमिकता।
दी ये माना गया कि नाजी जर्मनी जो है वो अपनी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री ताकत की वजह से जापान से भी बड़ा खतरा है, तो पहले उसे हराना जरूरी था, उसके बाद ही सारी ताकत प्रशांत महासागर में लगाई जाएगी। और इसी माहौल में बिल्कुल अचानक आइजनहावर को यूरोप में अमेरिकी सेनाओं का कमांडर बना दिया गया, उन्हें लंदन भेज दिया गया। यूं उनके करियर में एक बड़ा, बहुत बड़ा मोड़ था।
और यूरोप पहुंचते ही मतलब बड़ी चुनौती सामने आ गई होगी।
बिल्कुल, उनका पहला बड़ा मिशन था उत्तरी अफ्रीका में ऑपरेशन टॉर्च। ये नवंबर 1942 की बात है। सीधा फ्रांस पर हमला करने के बजाय उत्तरी अफ्रीका को चुना गया। क्यों? क्योंकि मित्र देशों को एक शुरुआती जीत चाहिए थी, और वहां जर्मन पकड़ थोड़ी कमजोर थी।
हाँ, ये तो समझ आता है।
उससे भी जरूरी बात यह थी कि ऑपरेशन टॉर्च एक तरह से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के लिए साथ काम करने का पहला बड़ा इम्तिहान था, एक प्रयोगशाला थी कहना चाहिए, जहां उन्होंने सीखा कि गठबंधन में युद्ध कैसे लड़ते हैं, उसकी मुश्किलें क्या हैं।
हाँ, ये तो सुनने में ही आसान नहीं लगता। दो अलग सेनाएं, अलग कमांड स्ट्रक्चर।
आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत राजनीतिक उलझने थीं। जैसे वहां जो फ्रेंच सेना थी, विची फ्रांस वाली, उसका क्या रवैया होगा ये साफ नहीं था। फिर लॉजिस्टिक्स, मतलब सप्लाई पहुंचाना, वो अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो आइजनहावर को सिर्फ मिलिट्री प्लानिंग नहीं करनी थी, बल्कि ये जो जटिल राजनीतिक और सप्लाई की समस्याएं थी उनसे भी जूझना था। ये उनके नेतृत्व की, उनके लचीलेपन की पहली बड़ी परीक्षा थी।
अच्छा, तो उत्तरी अफ्रीका में सफलता मिली, उसके बाद मित्र देशों ने क्या किया?
अगला निशाना था सिसिली। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हस्की। मकसद था भूमध्य सागर पर पूरी तरह कब्जा करना और इटली पर इतना दबाव बनाना कि वो युद्ध से हट जाए।
और ये सफल रहा?
हाँ, ये अभियान कामयाब रहा। मुसोलिनी का पतन हो गया और इटली ने हथियार डाल दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
मतलब इटली में लड़ाई फिर भी जारी रही?
जी हाँ, इटली ने सरेंडर किया तो जर्मन सेना ने वहां कब्जा कर लिया, और इटली की मुख्य भूमि पर जो लड़ाई हुई वो बहुत क्रूर और धीमी साबित हुई। पहाड़ी इलाका था और जर्मनों की डिफेंस लाइन बहुत मजबूत थी, जैसे गुस्ताव लाइन। इसने मित्र सेनाओं की बढ़त को बहुत मुश्किल बना दिया। आइजनहावर यहां इस बात पर भी सोचते हैं कि अभियान की मानवीय कीमत कितनी भारी थी। ये उनके ऊपर जो लीडरशिप का बोझ था उसे दिखाता है।
और इसी दौरान शायद उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, यूरोप पर मुख्य हमले की।
जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें मित्र देशों की जो संयुक्त सेना थी, एलाइड एक्सपेडिशनरी फोर्स, उसका सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। अब उनका एक ही मकसद था, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड।
ओवरलॉर्ड यानी नॉर्मंडी लैंडिंग, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला।
हाँ, फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरना और यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलना।
इसकी योजना तो असाधारण रही होगी। किताब में इसके बारे में क्या बताते हैं आइजनहावर?
किताब इसकी विशालता और जटिलता को बहुत अच्छे से सामने लाती है। ये सिर्फ सैनिकों को उतारना नहीं था, इसमें लॉजिस्टिक्स का मतलब सप्लाई चेन का एक अभूतपूर्व कमाल था।
जैसे
सोचिए, लाखों सैनिक और हजारों टन सामान को इंग्लैंड से फ्रांस ले जाना था। इसके लिए खास तौर पर कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए मलबरीज, जो रातों रात तैयार किए जा सकते थे। यहां तक कि समुद्र के नीचे से तेल की पाइपलाइन बिछाई गई, प्लूटो।
समुद्र के नीचे पाइपलाइन?
जी, आइजनहावर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सप्लाई लाइनों पर जीता या हारा जाता है। उनका एक मशहूर कोट भी है कि शौकिया लोग रणनीति की बात करते हैं, पेशेवर लॉजिस्टिक्स की।
वाह, और दुश्मन को धोखे में भी रखना पड़ा होगा।
बेहद जरूरी। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी, ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। नकली सेनाएं बनाई गई, नकली टैंक, नकली रेडियो मैसेज। इन सब से जर्मनों को यकीन दिलाया गया कि असली हमला नॉर्मंडी में नहीं बल्कि पास दे कैले में होगा। ये दिखाता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कितना अहम था।
लेकिन इतने बड़े गठबंधन में क्या मित्र देशों के कमांडरों के बीच रणनीति पर कोई मतभेद नहीं थे? सब एक ही बात पर सहमत थे?
नहीं, ऐसा नहीं था, मतभेद थे। और ये आइजनहावर के नेतृत्व की एक और बड़ी परीक्षा थी। खासकर ब्रिटिश कमांडर मॉन्टगोमरी और अमेरिकी जनरलों के बीच रणनीति को लेकर बहसें होती थीं।
अच्छा, किस तरह की बहसें?
मॉन्टगोमरी चाहते थे कि एक जगह पर एक संकरे मोर्चे पर पूरी ताकत से हमला किया जाए, जबकि आइजनहावर ने व्यापक मोर्चे यानी ब्रॉड फ्रंट की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि इससे जर्मन सेना कहीं एक जगह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाएगी और मित्र देशों की जो संख्या ज्यादा थी उसका फायदा उठाया जा सकेगा।
तो आइजनहावर का काम सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं था बल्कि अपने ही साथियों के बीच संतुलन बनाना भी था।
बिल्कुल, उन्हें इन बड़े ताकतवर व्यक्तित्वों को साथ लेकर चलना था।
फिर आया 6 जून 1944, डी-डे। आइजनहावर के लिए वो दिन कैसा था? किताब में क्या जिक्र है?
आइजनहावर उसे अपने जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक बताते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, हमले को टालने का भारी दबाव था, लेकिन मौसम विभाग ने एक छोटी सी उम्मीद जताई कि कुछ घंटों के लिए मौसम ठीक हो सकता है, और उसी पर उन्होंने आगे बढ़ने का जोखिम उठाया।
कितना बड़ा जोखिम?
बहुत बड़ा। वो उस गहरे अकेलेपन और जिम्मेदारी के बोझ का जिक्र करते हैं, ये जानते हुए कि हजारों जानें उनके एक फैसले पर टिकी हैं। उन्होंने तो पहले से एक नोट भी लिख लिया था, अगर हमला फेल होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते।
कमाल है, ये उनके चरित्र को दिखाता है।
जी, उनकी जवाबदेही को।
और नॉर्मंडी में उतरने के बाद की लड़ाई?
शुरुआती खबरें मिलीजुली थीं। कुछ जगहों पर कामयाबी मिली, लेकिन ओमाहा बीच पर अमेरिकी सेना को भयानक लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत भारी नुकसान हुआ। और फिर नॉर्मंडी के अंदरूनी इलाकों में, जहां घनी झाड़ियां थीं, हेजरो कंट्री, वहां लड़ाई और भी मुश्किल साबित हुई। इंच इंच जमीन के लिए लड़ना पड़ा। आखिरकार ऑपरेशन कोबरा नाम के एक बड़े हमले से जर्मन डिफेंस लाइन टूटी और मित्र सेनाएं आगे बढ़ पाईं।
इसके बाद तो फ्रांस की आजादी तेजी से हुई होगी।
हाँ, सेनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी, पेरिस आजाद हुआ, ये सब बहुत रोमांचक था। लेकिन इस तेजी की वजह से सप्लाई लाइन पर जबरदस्त दबाव पड़ा।
फिर वही लॉजिस्टिक्स की समस्या।
बिल्कुल, ईंधन और गोला बारूद सैनिकों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। इसके लिए फिर एक कमाल का सिस्टम बनाया गया, रेड बॉल एक्सप्रेस। ये ट्रकों का एक बहुत बड़ा काफिला था जो दिन रात सप्लाई पहुंचाता था। ये फिर साबित करता है कि लॉजिस्टिक्स कितनी ज्यादा जरूरी थी।
लेकिन तभी जब लग रहा था कि सब ठीक हो रहा है, जर्मनों ने पलटवार किया, बैटल ऑफ द बल्ज।
जी, दिसंबर 1944 में सबको लग रहा था कि युद्ध बस खत्म ही होने वाला है, तभी जर्मनों ने आर्डेन्स के जंगलों से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल अप्रत्याशित हमला कर दिया। इसी को बैटल ऑफ द बल्ज कहते हैं, और ये आइजनहावर के कमांड के लिए सबसे बड़ा संकट था।
मित्र देशों की सेनाएं तो तैयार नहीं होंगी इसके लिए?
बिल्कुल नहीं, वो पीछे हटने लगी, भ्रम का माहौल था।
ऐसे संकट में आइजनहावर का नेतृत्व कैसा रहा?
उन्होंने कमाल की दृढ़ता दिखाई, बहुत शांत रहे, तेजी से फैसले लिए, सेनाओं को जरूरी जगहों पर भेजा। जैसे 101वीं एयरबोर्न डिवीजन को बास्तोग ने भेजा गया, जिसने घिर जाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कमांड स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए, और सबसे जरूरी, मित्र देशों की एकता बनाए रखी
और अपने सैनिकों पर भरोसा जताया।
हाँ, ये बहुत अहम था। आखिरकार ये जर्मन हमला नाकाम हुआ। ये हिटलर का आखिरी बड़ा दाव था जो फेल हो गया, और इसने जर्मन सेना की कमल ही तोड़ दी।
इसके बाद तो फिर युद्ध का अंत नजदीक आ गया होगा।
जी हाँ, इसके बाद मित्र सेनाओं ने जर्मनी की आखिरी बड़ी रक्षा पंक्ति, राइन नदी, उसे पार किया। और जैसे जैसे वो जर्मनी के अंदर बढ़ते गए, नाजी हुकूमत के अत्याचारों का भयानक सच सामने आने लगा। कॉन्सेंट्रेशन कैंप,
आइजनहावर खुद भी गए थे इन कैंप्स में?
हाँ, वो खुद ओहरड्रुफ जैसे कैंप में गए और जो उन्होंने देखा उससे वो इतने स्तब्ध और दुखी हुए कि उन्होंने आदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक, पत्रकार और यहाँ तक कि आसपास रहने वाले जर्मन नागरिक इन कैंप्स को देखें,
ताकि कोई इनकार न कर सके।
बिल्कुल, वो चाहते थे कि दुनिया इस बर्बरता का सबूत देखे, ताकि भविष्य में कोई ये ना कह सके कि ऐसा हुआ ही नहीं था। ये उनके लिए इस युद्ध के नैतिक उद्देश्य की पुष्टि थी कि ये बुराई के खिलाफ एक धर्म युद्ध था।
और अंत में जर्मनी का आत्मसमर्पण?
जी, पूरब से सोवियत सेनाएं आ रही थीं, उनसे एल्बे नदी पर मुलाकात हुई और फिर 7 मई 1945 को फ्रांस के राइम्स शहर में आइजनहावर का जो मुख्यालय था, शेफ, सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलाइड एक्सपेडिशनरी फोर्स, वहीं पर जर्मन सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हुआ।
इस पूरी कहानी को अगर हम देखें, इस महागाथा को, तो आइजनहावर के वो कौन से मूल सिद्धांत या मूल्य थे जो उनके हर फैसले में, हर काम में झलकते हैं?
कई बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं। सबसे पहले तो, और शायद सबसे जरूरी, मित्र देशों की एकता। आइजनहावर का यह पक्का मानना था कि यह गठबंधन, ये एकता ही जीत की कुंजी है। उन्होंने शेफ को सच में एक इंटरनेशनल टीम बनाया। उनका काम सिर्फ मिलिट्री कमांडर का नहीं था, वो एक कुशल मध्यस्थ भी थे। पैटन, मॉन्टेगोमरी जैसे बड़े और मुश्किल व्यक्तित्वों को साथ लेकर चलना, उनके बीच संतुलन बनाना, ये भी उनका एक बड़ा काम था।
और लॉजिस्टिक्स पर उनका जो जोर था वो तो बार बार दिखा।
हाँ, ये उनकी सोच का केंद्र था। उनका वो कहना कि शौकिया रणनीति की बात करते हैं, पेशेवर लॉजिस्टिक्स की, ये उनकी पूरी सोच को दिखाता है। वो जानते थे कि सेनाएं पेट और ईंधन पर चलती हैं। मलबरी बंदरगाह, प्लूटो पाइपलाइन, ये सब उसी सोच का नतीजा थे। आधुनिक युद्ध सिर्फ बहादुरी का खेल नहीं है, ये व्यवस्थाओं का, सिस्टम का खेल है।
नेतृत्व का जो व्यक्तिगत बोझ होता है, क्या उसका भी जिक्र करते हैं वो?
बहुत गहराई से। वो सुप्रीम कमांडर होने के अकेलेपन और उस भारी जिम्मेदारी को छुपाते नहीं हैं। डी डे के फैसले का वो क्षण हो या रोजाना हजारों सैनिकों की जान की चिंता, ये किताब लीडरशिप के मानवीय पहलू को सामने लाती है।
और आपने पहले भी इशारा किया कि उन्हें सिर्फ जनरल नहीं, एक राजनेता भी बनना पड़ा।
निश्चित रूप से, उन्हें चर्चिल जैसे बड़े नेताओं के विचारों को समझना था, रूजवेल्ट का राजनीतिक समर्थन साधना था, द गॉल जैसे जटिल सहयोगी की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, तो उन्हें सैन्य लक्ष्यों को राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ना पड़ता था। ये उनकी भूमिका का एक बहुत अहम हिस्सा था।
युद्ध का नैतिक पहलू, जिसे उन्होंने धर्म युद्ध कहा, वो कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए?
ये उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल जैसा था। वो इसे सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं मानते थे, उनके लिए ये आज़ादी और तानाशाही के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच एक नैतिक संघर्ष था। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप की जो भयावहता उन्होंने देखी, उसने इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि ये त्याग, ये कुर्बानी मानवता के भविष्य के लिए जरूरी थी।
और उनकी व्यापक मोर्चा रणनीति, जिसके बारे में मतभेद भी थे, क्या वो आखिरकार सफल रही?
हाँ, उनका मानना था कि मित्र देशों की जो विशाल संख्या और औद्योगिक ताकत है, उसका फायदा तभी मिलेगा जब दुश्मन पर हर तरफ से लगातार दबाव डाला जाए। इससे जर्मन सेना बढ़ जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हालांकि इस पर बहस हुई, जैसा हमने कहा, लेकिन अंत में ये रणनीति कामयाब रही और जीत में इसकी बड़ी भूमिका थी।
और आम सैनिकों के प्रति उनका नजरिया कैसा था?
वो हमेशा जीत का श्रेय आम सैनिक को देते थे, जिसे अमेरिका में GI जो कहते हैं, और उसके साथ ही मित्र देशों के सैनिकों को। वो मानते थे कि लीडर का काम है सैनिकों को जीतने के लिए साधन देना, मौका देना। असली हीरो तो वो हैं जो मैदान में लड़ते हैं।
अगर हमें इस पूरे युद्ध और आइजनहावर के नेतृत्व में से 3 सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों, तो वो कौन से होंगे आपके हिसाब से?
ये मुश्किल है चुनना, पर मेरे ख्याल से 3 पल बहुत अहम थे। पहला, जब उन्हें मित्र देशों की संयुक्त सेना का सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया।
अच्छा,
इससे युद्ध का पूरा फोकस यूरोप पर हमले पर आ गया और उन्हें इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व करने का मौका मिला। ये उनके करियर और युद्ध की दिशा दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
और दूसरा मोड?
दूसरा, डी-डे पर हमला शुरू करने का उनका वो फैसला। जैसा हमने बात की, मौसम खराब था, अनिश्चितता थी, हमले को टालने के भी अपने खतरे थे और हमला करने में तो भारी जोखिम था ही। उस दबाव में उतनी कम जानकारी के साथ इतना बड़ा जोखिम लेना, ये उनके निर्णायक नेतृत्व और नैतिक साहस का सबसे बड़ा सबूत है। वो पहले से लिखी जिम्मेदारी वाली चिट्ठी तो इसे और भी साफ कर देती है।
सही बात है। और तीसरा?
तीसरा मेरे लिए वो था बैटल ऑफ द बल्ज का सफलतापूर्वक सामना करना। जब जर्मन सेना ने अचानक हमला किया, मित्र देशों की लाइनें टूट गईं, वो एक भयानक संकट का पल था। उस घबराहट और भ्रम के माहौल में आइजनहावर ने जिस तरह शांति बनाई रखी, तेजी से सही कदम उठाए, सेनाओं को सही जगह भेजा और गठबंधन को बिखरने नहीं दिया, वो कमाल था। उस लड़ाई को जीतकर उन्होंने न सिर्फ मित्र देशों को एक बड़ी हार से बचाया, बल्कि हिटलर की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। वो संकट में नेतृत्व की असली परीक्षा थी जिसमें वो खरे उतरे।
इस किताब से और आइजनहावर के अनुभवों से आज के समय में हम क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं? ये बातें आज की दुनिया पर कैसे लागू होती हैं?
बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके अनुभव बहुत यूनिवर्सल हैं, जैसे टीम मैनेजमेंट। कैसे मजबूत, शायद मुश्किल भी, पर प्रतिभाशाली लोगों को, जैसे पैटन मॉन्टगोमरी थे, एक साथ लाएं एक कॉमन गोल के लिए। उनकी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करें और उनके बीच के झगड़ों को कैसे सुलझाएं? ये तो आज किसी भी कंपनी के लीडर या टीम मैनेजर के लिए बिल्कुल सीधा सबक है।
और दबाव में फैसले लेना, ये तो हम सबके जीवन में आता है, छोटे या बड़े रूप में।
बिल्कुल, आइजनहावर का तरीका देखिए। जानकारी पूरी नहीं है, नतीजे गंभीर हो सकते हैं, फिर भी शांत रहना, एक्सपर्ट्स की सुनना, सलाह लेना, जोखिम का अंदाजा लगाना, और फिर एक बार तय कर लिया तो दृढ़ता से उस पर अमल करना। ये काबिलियत आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत जरूरी है।
और जवाबदेही की बात भी, वो डीडे वाली चिट्ठी।
हाँ, वो सिखाती है कि सच्चा लीडर कौन होता है, जो कामयाबी का सहरा टीम के सर बांधता है लेकिन नाकामी की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद लेता है। ये बहुत बड़ी बात है।
योजना बनाने पर उनका वो विचार भी बड़ा दिलचस्प है। योजनाएं बेकार हैं लेकिन योजना बनाना अनिवार्य है। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि तैयारी करना, हर पहलू पर सोचना, प्लान बनाना, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये आपको तैयार करता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे ही आप मैदान में उतरेंगे, हालात बदलेंगे, तो आपको अपनी योजना बदलने के लिए तैयार रहना होगा। असल चीज वो कागज की योजना नहीं, बल्कि योजना बनाने की प्रक्रिया से जो समझ और लचीलापन आता है, वो है अडैप्टेबिलिटी। ये आज हर फील्ड में लागू होता है।
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में क्या सबक मिलता है, खासकर आज की दुनिया में?
ये किताब दिखाती है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्वार्थ वाले ग्रुप्स का साथ आना कितना मुश्किल हो सकता है, पर अगर वो साथ आ जाएं तो कितने ताकतवर हो सकते हैं। एक साझा लक्ष्य पर फोकस रखना, एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना और बातचीत जारी रखना, ये आइजनहावर के गठबंधन चलाने के मूल मंत्र थे। और ये आज भी इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर ऑफिस की टीम तक हर जगह काम आते हैं।
और आखिर में नैतिक नेतृत्व का महत्व।
जी हाँ,
मुश्किल वक्त में भी अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, उनका युद्ध को सिर्फ एक सैन्य अभियान ना मानकर एक नैतिक धर्म युद्ध मानना, और कंसंट्रेशन कैंप की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का उनका वो फैसला, ये दिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ काबिलियत की बात नहीं है, ये चरित्र की भी बात है।
तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए, वो तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो श्रोताओं को आइजनहावर और क्रुसेड इन यूरोप से याद रखनी चाहिए?
हाँ, जरूर। मेरे विचार से तीन मुख्य निष्कर्ष ये निकलते हैं। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इमोशनल इनसाइट, कि लीडरशिप के शिखर पर बहुत गहरा अकेलापन और भारी बोझ होता है। आइजनहावर का वो गुप्त नोट जिसमें उन्होंने डीडे की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात लिखी थी, वो इस बोझ की शायद सबसे अच्छी मिसाल है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े फैसलों के पीछे का मानवीय संघर्ष कितना गहरा होता है।
दूसरा निष्कर्ष, शायद बौद्धिक स्तर पर। दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, इंटेलेक्चुअल इनसाइट, कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसी बड़ी लड़ाई सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती गई, ये लॉजिस्टिक्स की जीत थी, औद्योगिक उत्पादन की जीत थी, जटिल योजना बनाने की जीत थी और राष्ट्रों के बीच अभूतपूर्व तालमेल की जीत थी। इतने सारे देशों के इतने बड़े सिस्टम को एक साथ चलाना दुश्मन से लड़ने जितना ही मुश्किल काम था। आइजनहावर का वो योजना बनाना अनिवार्य है वाला विचार इसी मैनेजमेंट की अहमियत बताता है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब पर लागू हो।
तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट, कि किसी भी बड़ी चुनौती पर काबू पाने के लिए उद्देश्य की एकता और असरदार जवाबदेह नेतृत्व सबसे जरूरी हैं, चाहे वो युद्ध हो, कोई बड़ा सामाजिक बदलाव हो या कोई निजी लक्ष्य। मतभेदों के बावजूद मिलकर काम करने की काबिलियत ही असाधारण नतीजे ला सकती है। आइजनहावर की कहानी यही दिखाती है कि साझा कोशिश से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।